आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। इंडोनेशिया में द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुआ एंथनी अल्बनीजी का जोर शोर से स्वागत। भारत में पैगंबर पर विवादास्पद बयानों से उपजी अंतर्राष्ट्रीय मुश्किलें और फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल के पैर की चोट के चलते विंबलडन खेलना अनिश्चित। और अब खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच होने वाली पहली आमने सामने की वार्ता जकार्ता में जारी है। ऑस्ट्रेलियाई दूतों का दल बीती रात ही इंडोनेशिया की राजधानी पहुंचा था। विदेश मंत्री पेनी वोंग अपने इंडोनेशियाई समकक्ष रेटनो मरसूदी से मुलाकात कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के साथ अपने संबंधों को अब और गहरा करना चाहता है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी भी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विदोदो से मुलाकात करेंगे, जहां द्विपक्षीय व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दे केंद्र में रह सकते हैं। श्री अल्बनीजी ने पत्रकारों से कहा कि उनकी ये यात्रा जरूरी और अर्थपूर्ण है।
My first visit as Labor leader was to Indonesia, and I wanted to make sure that my first bilateral visit was here to Indonesia. And I look forward to the discussions with President Widodo about strengthening our economic relationship, about acting on climate change, about foreign aid, about increasing our people-to-people relations going forward.
दूसरी ओर चीन ने ऑस्ट्रेलिया की मई में एक चीनी विमान के ऑस्ट्रेलियाई परिधि में होने की शिकायत का जवाब दिया है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मालिस का कहना है कि चीनी लड़ाकू जहाज ने पहले अग्नि के इशारे छोड़े थे और फिर ऑस्ट्रेलियाई विमान P-8 की नोक के बहुत करीब आकर रुक गया था। इसके बाद चीनी विमान ने मलबे का एक बंडल छोड़ा था जिसमें एल्यूमिनियम के कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे और ये टुकड़े ऑस्ट्रेलियाई P-8 विमान में जा धंसे थे। पर कम्युनिस्ट पार्टी नियंत्रित ग्लोबल टाइम्स अखबार ने ऑस्ट्रेलियाई विमान पर कथित रूप से उकसाने का आरोप लगाया है और चीनी विमान के कृत्यों को आत्मरक्षा का नाम दिया है। अखबार का कहना है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई विमान चीनी परिधि में घुसने वाला था। स्वास्थ्य यूनियनों ने सचेत रहते हुए न्यू साउथ वेल्स सरकार के स्वास्थ्य कर्मियों को एक बार ही दिए जाने वाले $3,000 के बोनस और पब्लिक सेक्टर के वेतन की सीमा को बढ़ाकर 3% तक करने के फैसले का स्वागत किया है। स्वास्थ्य सेवा यूनियन सचिव जेरॉड हेज का कहना है कि थकी हुई स्वास्थ्य श्रम शक्ति इससे बहुत खुश होगी, पर उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इतना ही करना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काफी नहीं होगा।
Look, I think it's certainly a step in the right direction. Effectively, for a health worker who's a cleaner, who did receive 2 years ago $149, they'll effectively, with the $3,000 one-off payment, have a 9% increase. I think that is very good in the short term, but I think there's a longer-term game as well to be played here. That will recognize real wages through work value, and that's what we'd continue to focus on going forward.
ये सामने आया है कि विक्टोरिया पुलिस इंडिजीनियस व्यक्तियों को फोर्स में शामिल करने के तय लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। पुलिस ने पिछले साल लक्षित किया था कि फोर्स पर 1% व्यक्ति इंडिजीनियस होंगे, लेकिन पुष्टिकृत आंकड़ों के अनुसार फोर्स पर केवल 0.55% लोग ही अबोरिजिनल या इंडिजीनियस पहचान रखते हैं। विक्टोरिया पुलिस ने ये कहते हुए स्वयं का बचाव किया है कि अपनी पहचान बताना वैकल्पिक है और ये डेटा केवल उन लोगों का है जो अपनी पहचान बताने के बाद सार्वजनिक भी करने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि पुलिस दूसरे क्षेत्रों में सफल रही है, जिसमें फोर्स पर कम से कम 9.2% व्यक्ति सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरी ओर जॉन बारिलारो का कहना है कि गूगल के खिलाफ उनका मानहानि का मुकदमा खत्म होने के बाद वे अब सुकून में हैं। गूगल के मुकदमे से पीछे हटने के बाद श्री बारिलारो को अदालत ने $715,000 का हकदार बताया था। अदालत ने माना है कि बहुप्रचलित हुए वे वीडियो जिनमें पूर्व सांसद को भ्रष्ट बताया गया और कहा गया कि उन्हें जेल जाना चाहिए के कारण श्री बैरिलारो की मानहानि हुई थी। फैसला आने के बाद अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जॉन बैरिलारो ने कहा कि सुनवाई के बीते 2 साल बहुत मुश्किल थे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वे खुशकिस्मत हैं कि उन्हें अपना नाम साफ करने का मौका मिला।
You've got to be the courageous or stupid to take on Google, and maybe there's a bit of both. But the reality is that it is unfair for the little guy out there, and I see it every day. They don't have the opportunity to defend their name and go to court. I had that opportunity.
और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में 2 और गोलीबारी की वारदात होने के बाद विभिन्न राजदलों के नेता साथ आकर गन लॉज में सुधार की मांग कर रहे हैं। जहां पहली घटना में पेनिसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में मनोरंजन स्थल पर हुई गोलीबारी में 3 लोग मारे गए जबकि कम से कम 11 लोग घायल हुए, वहीं इस घटना के कुछ घंटों बाद ही टेनेसी के चटानूगा में बार के बाहर हुई गोलीबारी में 3 लोग मारे गए जबकि कम से कम 14 घायल हुए। डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ने CNN को बताया कि गन कंट्रोल पर होने वाली चर्चाएं बहुत बड़े बदलाव तो नहीं ला सकेंगी, लेकिन बंदूक खरीदने वाले लोगों की जांच और उनके बंदूक के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंताएं व्यक्त करने के कानूनों, जिन्हें रेड फ्लैग लॉज कहा जाता है, में सुधार जरूर आ सकता है।
There is just a deep, deep fear for our children right now, and also a fear that government is so fundamentally broken that it can't put politics aside to guarantee the one thing that matters most to adults in this country, the physical safety of their children. And so I think the possibility of success is better than ever before, but I think the consequences of failure for our entire democracy are more significant than ever.
और अब खबरें भारत से। पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले पर इस्लामिक देशों द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है। पैगंबर के खिलाफ कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी की पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ईरान ने निंदा की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और दोनों नेताओं ने अपने बयान भी वापस ले लिए हैं। कतर, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के विदेश मंत्रालयों ने भारतीय राजदूतों को तलब कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इन बयानों के लिए सार्वजनिक माफी की मांग भी की। कतर की निंदा भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के साथ अमीर खाड़ी राज्य के हाई प्रोफाइल दौरे के बीच हुई है। भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस वाकये को लेकर हिंसा भी भड़की। वहीं भाजपा ने पैगंबर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के बाद अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया जबकि दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दूसरी ओर भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,518 नए मामले सामने आए हैं जिसके साथ ही देश में COVID-19 मामलों में 5.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान 9 लोगों की इस घातक वायरस के चलते मृत्यु भी हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय कोरोना के कुल 25,782 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,57,000 से ज्यादा टीकों को वितरित किया गया है और अब तक 1.94 बिलियन टीकों की खुराकों से अधिक वितरित की जा चुकी हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.51 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। नए फ्रेंच ओपन चैंपियन राफेल नडाल का कहना है कि अगर उनका शरीर साथ देगा तो वे इस महीने के अंत में विंबलडन जरूर खेलेंगे। 36 वर्षीय टेनिस दिग्गज सीजन की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई ओपन और अब फ्रेंच ओपन की बड़ी जीत के बाद एक और ग्रैंड स्लैम जीतने की राह पर हैं। नडाल की झोली में रिकॉर्ड 22 पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, जो कि उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी नोवाक जोकोविक और रॉजर फेडरर से 2 अधिक हैं। पर उनका कहना है कि उन्होंने रविवार का ये फाइनल मैच सुन्न पैर के साथ खेला, जो कि कई इंजेक्शन लगने का नतीजा था, और वे एक और श्रृंखला इस तरह नहीं खेलना चाहते।
Of course, Roland Garros is Roland Garros. Everybody know how much means to me this tournament, so I wanted to keep trying and to give myself a chance here, and that was the only way to give myself a chance here, no? So I did it, but it's obvious that I can't keep competing with the foot slip.
और अंत में एक नजर देश के प्रमुख शहरों के कल के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप ही धूप रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में दिन ढलने के साथ बारिश कम होने के आसार हैं। यहाँ अधिकतम तापमान 15 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं मेलबर्न में दिन ढलने के साथ बारिश पड़ने की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 11 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और देश की राजधानी कैनबरा में भी बारिश की आशंका जताई गई है। यहाँ अधिकतम तापमान 8 जबकि न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल तेज धूप खिले रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी कल धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। डार्विन में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल तेज धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 जबकि न्यूनतम 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।